एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्ते।
आज हम बात करेंगे भोजन की,
मतलब रोजमर्रा की जरूरत तो है ही, स्वाद, सेहत, ये सब तो है।
हाँ, लेकिन क्या भोजन सिर्फ इतना ही है? शायद नहीं।
सही कहा। आज हम जानेंगे कि भाई कैसे हमारी थाली में जो है वो हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और यहाँ तक कि दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था की कहानी भी कहता है।
बिल्कुल। और इस गहरी पड़ताल में हम सहारा ले रहे हैं फैबियो परासेकोली की किताब फूड का।
मैं हूँ आपकी दूसरी मेजबान।
और हम मिलकर देखेंगे कि कैसे ये किताब हमें सिर्फ खाने के बारे में नहीं, बल्कि उस पूरे अदृश्य ताने बाने के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो खेत से हमारी प्लेट तक जुड़ा हुआ है।
हाँ, तो ये समझना आज इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? क्योंकि हम लगातार सुनते तो हैं, हेल्दी खाओ, ऑर्गेनिक खरीदो, लोकल को सपोर्ट करो।
लेकिन इन सब विकल्पों के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं, कौन से सिस्टम हैं, ये जानना ही मेरे ख्याल से असली फूड लिटरेसी है, मतलब भोजन साक्षरता।
सही। और ये किताब हमें वही नज़र देती है, वही समझ देती है।
तो चलिए इस समझ के सफर पर निकलते हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल। शुरुआत करते हैं लेखक से, फैबियो परासेकोली। ये नाम फूड स्टडीज की दुनिया में मतलब काफी जाना माना है।
सही।
ये सिर्फ लेखक नहीं है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और द न्यू स्कूल जैसे संस्थानों में प्रोफेसर भी हैं।
हाँ।
पर जो दिलचस्प बात है वो ये कि इनकी जड़ें इटली में है।
अच्छा।
हाँ, और ये बात खास है, मतलब एक तरफ तो उन्हें इतालवी खान पान की गहरी एकदम अंदरूनी समझ होगी
हाँ।
और दूसरी तरफ उन्होंने पूरी दुनिया में घूमकर भोजन पर शोध किया है, तो एक ग्लोबल नजरिया भी है।
बिल्कुल। और उनका नजरिया सिर्फ एकेडमिक भी नहीं है,
हाँ
उन्होंने वो साहित्य, संस्कृति और पत्रकारिता में भी काम किया है, वो भी विदेश नीति और अर्थशास्त्र जैसे विषयों पर। वाह, तो ये तो बड़ा ही अनोखा मेल है, ये उन्हें एक अलग ही दृष्टि देता होगा।
हाँ सही। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या पक रहा है, बल्कि क्यों पक रहा है, कौन पका रहा है, कौन बेच रहा है और इस पूरी प्रक्रिया में सत्ता, संस्कृति, मीडिया, इन सब की क्या भूमिका है। उनकी दूसरी किताबें भी हैं जैसे बाइट मी, फूड इन पॉपुलर कल्चर या इटली के खाने पर अल डेंटे। ये भी इसी जटिल रिश्ते को खोलती हैं।
इसीलिए उन्हें महज एक इतिहासकार या समाजशास्त्री कहना शायद काफी नहीं होगा। आपने कहा वो एक फूड सिस्टम्स थिंकर हैं।
हाँ बिल्कुल।
मतलब वो खाने की हर चीज को एक बड़े इंटरकनेक्टेड सिस्टम के हिस्से के तौर पर देखते हैं, है ना? बीज से लेकर कहाँ तक, कचरे के डब्बे तक।
एकदम। और उसके बीच में आने वाले हर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पड़ाव को जोड़कर देखते हैं। वो कनेक्शंस देख पाते हैं जो हमें शायद पहली नज़र में दिखते भी नहीं। और यही सोच उनकी किताब फूड की बुनियाद है। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि भोजन महज पेट भरने या पोषण पाने का साधन नहीं है, ये एक बेहद जटिल सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक ताना बाना है जो ना सिर्फ हमारी सभ्यता को आकार देता है बल्कि उसे आईने की तरह दिखाता भी है।
तो किताब का मिशन क्या हुआ फिर? हमारी फूड इलिटरेसी, जैसा आपने कहा,
जी
मतलब भोजन को लेकर जो हमारी सतही समझ है उसे चुनौती देना।
हाँ बिल्कुल। हम सुपरमार्केट जाते हैं, इतनी सारी चीजें देखते हैं, रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं, लेकिन ये सब हम तक पहुंचा कैसे, इसके पीछे की कहानी क्या है, हम ज्यादातर सोचते नहीं। परासेकोली हमें वो सिस्टम्स थिंकिंग का चश्मा देते हैं।
अच्छा।
बिल्कुल। ये किताब ना एक तरह की यात्रा है। शुरू होती है हमारे अपने निजी अनुभव से, हमें क्या पसंद है, हम क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं। फिर धीरे धीरे ये दायरा फैलता है। किताब हमें दिखाती है कि कैसे भोजन हमारी व्यक्तिगत पहचान से जुड़ता है, हमारी राष्ट्रीय पहचान से जुड़ता है।
अच्छा।
फिर संस्कृति की परतें खुलती हैं, रीति रिवाज, त्योहार, मीडिया का क्या असर है। उसके बाद आता है राजनीति और अर्थशास्त्र का विश्लेषण, कैसे बड़ी कंपनियां खाने को कंट्रोल करती हैं, कैसे खेती की नीतियां बनती हैं, कैसे असमानता पैदा होती है, और अंत में भविष्य की चुनौतियां और संभावनाएं, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, स्थिरता। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि दुनिया को भोजन के लेंस से देखने का एक नया तरीका सिखाती है।
चलिए, ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। आप कुछ खास थीम्स पर थोड़ी गहराई में उतरते हैं। पहला और शायद सबसे दिलचस्प पहलू
भोजन, संस्कृति और पहचान का रिश्ता।
हाँ,
पारस कोहली कहते हैं कि हमारी खाने की आदतें शायद हमारी सबसे गहरी और स्थायी सांस्कृतिक पहचानों में से एक हैं। क्या ये सही है?
हाँ बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक बहुत रोचक कॉन्सेप्ट है, गैस्ट्रो नेशनलिज्म।
गैस्ट्रो डॉट नेशनलिज्म, ये क्या होता है? सुनने में भारी लग रहा है।
हाँ थोड़ा है, पर मतलब सीधा है, कैसे देश भोजन को अपनी राष्ट्रीय पहचान गढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा,
जैसे
सोचिए ना, कैसे हम कहते हैं इटली मतलब पास्ता, जापान मतलब सुशी, भारत मतलब, खैर हमारे यहाँ तो इतनी विविधता है कि एक चीज कहना मुश्किल है।
हाँ सही बात है, लेकिन हर देश कुछ खास व्यंजनों को अपनी पहचान बनाकर दुनिया के सामने पेश करता है,
हाँ
और ये सिर्फ बाहर दिखाने के लिए नहीं।
हाँ अंदरूनी एकता भी तो बढ़ाता होगा, है ना?
बिल्कुल सही, दोनों तरह से काम करता है ये। और जब लोग अपना देश छोड़कर कहीं और बसते हैं, तब तो भोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वो अपनी जड़ों से जुड़े रहने का, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका बन जाता है, सिर्फ व्यंजन ही नहीं।
बनाने का तरीका, खाने का तरीका।
हाँ, किसके साथ खाना है, इन सब में गहरे सांस्कृतिक कोड छिपे होते हैं।
ये तो है।
बिल्कुल, और ये सिर्फ राष्ट्रीय या प्रवासी पहचान तक ही सीमित नहीं है, भोजन धार्मिक पहचान भी बनाता है, जैसे कोशर या हलाल नियम है, या फिर आजकल विचारधारा के आधार पर भी समूह बनते हैं, जैसे शाकाहारी या वीगन समुदाय। तो भोजन जोड़ता भी है और सीमाएं भी बनाता है।
और साथ बैठकर खाने का जो सामाजिक महत्व है, आपने क्या शब्द इस्तेमाल किया था? कमेंसैलिटी।
हाँ कमेंसैलिटी।
हाँ, तो वो तो शायद मानव समाज की बुनियादी है, लेकिन साथ ये भी सच है कि क्या खाया जा रहा है वो हमेशा से सामाजिक हैसियत का निशान रहा है।
बिल्कुल,
पहले जमाने में शायद चीनी या मसाले विलासिता थे, आज शायद वो ऑर्गेनिक आर्टिसनल फूड बनाम सस्ता प्रोसेस्ड फूड में वो फर्क दिखता है। हमारे यहाँ भी को दावतों में खास पकवान बनाना हैसियत से जुड़ा रहा है।
एकदम सही। अब आते हैं एक ऐसे पहलू पर जो शायद हमें थोड़ा चौंका दे, भोजन की राजनीति और अर्थशास्त्र।
राजनीति खाने में?
हाँ, पारस एक होली का एक बहुत मशहूर कथन है, कोई भी भोजन अराजनीतिक नहीं होता है।
और राजनीतिक नहीं होता, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना?
हाँ लगता तो है, पर अगर आप सोचें तो मतलब ये कि हम जो भी खाते हैं उसके उत्पादन से लेकर वितरण तक हर कदम पर राजनीतिक और आर्थिक फैसले शामिल होते हैं।
अच्छा, कैसे?
भाई कौन सी फसल उगाई जाएगी, किसे सब्सिडी मिलेगी, व्यापार समझौते कैसे होंगे, जमीन का मालिक कौन होगा, ये सब क्या है, ये सब राजनीतिक निर्णय ही तो है।
बात तो सही है।
और खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, मतलब सबको पर्याप्त भोजन मिले, और खाद्य संप्रभुता, फूड सॉवरेंटी, यानी समुदायों का अपने भोजन तंत्र पर नियंत्रण हो, ये दोनों ही गहरे राजनीतिक मुद्दे हैं, और इनमें असमानता साफ दिखती है, देशों के बीच भी और देश के अंदर भी।
हाँ ये तो है। इतिहास में भी देखें तो आयरलैंड का वो आलू अकाल का उदाहरण आपने दिया, कैसे सरकारी नीतियों ने भुखमरी को और भयानक बना दिया था।
बिल्कुल, और आज की जो औद्योगिक खेती है, बड़े बड़े फार्म, एक ही तरह की फसल उगाना, ढेर सारे केमिकल, मशीनें।
हाँ, उत्पादन तो बहुत बढ़ाया इसने।
उत्पादन तो बढ़ाया, पर इसकी कीमत भी तो चुकानी पड़ी है, पर्यावरण का नुकसान, मिट्टी की बर्बादी, पानी का संकट, छोटे किसानों का हाशिए पर चले जाना, ये सब इसके साइड इफेक्ट्स हैं। और इस पूरे सिस्टम के पीछे अक्सर कौन होता है, मुट्ठी भर विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियां, नेस्ले, कारगिल, बायर, मोनसेंटो जैसे नाम सुने होंगे।
हाँ हाँ सुने।
ये बेच से लेकर सुपरमार्केट की शेल्फ तक पूरी फूड चेन पर मतलब दबदबा रखती हैं, और इनके पास सरकारों को प्रभावित करने की भी जबरदस्त ताकत होती है।
और फिर वो मानवीय कीमत जिसके बारे में हम शायद कम ही सोचते हैं, खेतों में काम करने वाले मजदूर या बूचड़खानों के कर्मचारी, रेस्टोरेंट के किचन स्टाफ।
हाँ, अक्सर ये सबसे कमजोर तबके के लोग होते हैं ना, प्रवासी होते हैं जिनका शोषण आसान होता है। हमें जो सस्ता खाना मिलता है उसकी असली कीमत शायद ये लोग चुका रहे होते हैं।
बिल्कुल,
और ऊपर से मार्केटिंग का खेल चलता रहता है, कैसे हमें लगातार अनहेल्दी प्रोसेस्ड खाने की तरफ धकेला जाता है।
ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प मुद्दे पर आते हैं। ये जो वैश्वीकरण बनाम स्थानीय भोजन की बहस है, क्या दुनिया भर के स्वाद हमारी थाली में आने से विविधता बढ़ी है, या फिर सब कुछ एक जैसा होता जा रहा है, मैकडॉनल्ड्स हर जगह?
हाँ, ये बड़ा पेचीदा सवाल है, और पारस कोहली का मानना है कि ये इतना सीधा नहीं है। उनका एक बड़ा अच्छा विचार है कि स्थानीय और वैश्विक विरोधी नहीं, बल्कि डांस पार्टनर हैं।
डांस पार्टनर मतलब?
मतलब वो एक दूसरे पर असर डालते हैं, एक दूसरे को बदलते हैं, दुश्मन नहीं है।
अच्छा,
इसका एक क्लासिक उदाहरण है ग्लोकलाइजेशन। ग्लोकलाइजेशन,
ग्लोकलाइजेशन ये क्या है?
यानी ग्लोबल कंपनियां लोकल स्वाद के हिसाब से खुद को कैसे ढालती हैं। जैसे आपने मैकडॉनल्ड्स का नाम लिया,
हाँ,
तो भारत में उनका आलू टिक्की बर्गर या महाराजा मैकलाना, या फिलीपींस में वो चावल के साथ बर्गर बेचते हैं। ग्लोबल ब्रांड है पर लोकल तड़का लगा दिया।
हाँ हाँ, ये तो देखा है।
लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसी वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया में लोग अपनी जड़ों की तरफ भी लौट रहे हैं। स्थानीय खाद्य आंदोलन जोर पकड़ रहे हैं,
जैसे वो फार्मर्स मार्केट्स।
हाँ, किसान बाजार, फार्म टू टेबल रेस्टोरेंट, ये क्यों इतने लोकप्रिय हो रहे हैं? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि उनका खाना कहाँ से आया, किसने उगाया। वो उस खाने से एक कनेक्शन महसूस करना चाहते हैं।
सही बात है।
यहीं पर टेरोयर की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है। मतलब किसी खास जगह की मिट्टी, मौसम, परंपरा का वहाँ के खाने के स्वाद पर जो अनोखा असर होता है।
जैसे दार्जिलिंग की चाय
या नागपुर के संतरे।
बिल्कुल।
अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई असली चीज है या सिर्फ मार्केटिंग का तरीका? किताब इस बहस में भी उतरती है।
और टमाटर या सुशी जैसे उदाहरण तो पूरी कहानी कह देते हैं ना?
हाँ, टमाटर जो असल में दक्षिण अमेरिका का था, आज इटली की पहचान बन गया। लेकिन सुपरमार्केट वाला टमाटर अक्सर बेस्वाद होता है, सिर्फ दिखने में सुंदर।
बिल्कुल।
और सुशी एक पारंपरिक जापानी डिश आज ग्लोबल फूड ट्रेंड बन गई है। लेकिन इससे ट्यूना जैसी मछलियों पर खतरा मंडराने लगा और एक बहुत जटिल ग्लोबल सप्लाई चेन बन गई। ये दिखाता है कि वैश्वीकरण कितना पेचीदा मामला है।
और आज के दौर में हम भोजन के बारे में जानते कैसे हैं? मतलब जानकारी कहाँ से मिलती है? यही मीडिया और टेक्नोलॉजी की भूमिका आती होगी।
बिल्कुल। टीवी पर कुकिंग शो, फूड ब्लॉग्स, इंस्टाग्राम पर खाने की वो ललचाने वाली तस्वीरें, ये सब मिलकर हमारी पसंद, नापसंद, हमारी इच्छाओं को गढ़ रहे हैं।
किताब में फूड पॉर्न शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना?
हाँ, ये उन तस्वीरों और वीडियोस के लिए है जो खाने को इतना आकर्षक दिखाते हैं कि बस मुंह में पानी आ जाए, भले वो सेहतमंद हो या ना हो। फोकस पूरी तरह दिखने पर है, स्वाद या पोषण पर उतना नहीं।
हाँ, इंस्टाग्राम तो भरा पड़ा है इसे।
और फिर है सेलिब्रिटी शेफ, वो सिर्फ खाना बनाना नहीं सिखाते, वो एक तरह से तय करते हैं कि क्या अच्छा खाना है, क्या कूल है। वो इलीट फूड कल्चर को आम लोगों तक लाते हैं, पर साथ ही एक तरह का सांस्कृतिक दबदबा भी बनाते हैं।
और दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजी, खेती के तरीकों में बदलाव आ रहा है, वो प्रिसिजन एग्रीकल्चर।
हाँ, जहाँ डेटा की मदद से खेती होती है
और खाना हम तक कैसे पहुँचता है, ये बदल रहा है, डिलीवरी एप्स का जमाना है।
बिल्कुल। और भविष्य की टेक्नोलॉजी तो और भी क्रांतिकारी लग सकती है। GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, जिन पर सालों से बहस चल रही है।
हाँ, कि वो फायदेमंद है या खतरनाक।
सही। फिर लैब में बनने वाला मांस, सेलुलर एग्रीकल्चर या इमारतों के अंदर खेती, वर्टिकल फार्मिंग, दावे तो बड़े बड़े हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई भोजन को सस्ता और सुलभ बनाकर सबको फायदा पहुंचाएगी, या फिर इससे भी नई तरह की असमानताएं पैदा होंगी? कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा?
ये बहुत अहम सवाल है। तो इन सारी बातों से, इस पूरी चर्चा से मुख्य संदेश क्या उभर कर आते हैं, अगर हमें कुछ निचोड़ निकालना हो?
मेरे लिए पहला और सबसे बड़ा सबक है, भोजन सिर्फ एक चीज नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है, एक जटिल तंत्र। हमें टुकड़ों में सोचने की बजाय सिस्टम्स थिंकिंग अपनानी होगी।
सिस्टम्स थिंकिंग मतलब?
मतलब ये समझना होगा कि हमारी थाली में रखे चावल के दाने का रिश्ता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों से कैसे जुड़ा है। सब कुछ जुड़ा हुआ है।
ठीक है, और दूसरा?
दूसरा अहम संदेश है वैश्विक और स्थानीय का गहरा अविभाज्य रिश्ता। वो डांस पार्टनर्स वाली बात।
हाँ,
हमारी छोटी सी पसंद का असर दुनिया के किसी दूसरे कोने में महसूस हो सकता है। वो क्विनोआ वाला उदाहरण याद है?
हाँ, कि वहाँ के किसान खुद नहीं खरीद पा रहे थे।
बिल्कुल। पश्चिमी देशों में मांग बढ़ी और एंडीज के किसानों की जिंदगी बदल गई। तो हमारी प्लेट की कहानी सिर्फ हमारी नहीं है।
तीसरा?
तीसरा, भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, ये पहचान गढ़ता है और शक्ति का प्रतीक भी है। ये समुदाय बनाता है, जैसे एक ही तरह का खाना खाने वाले लोग। लेकिन ये सीमाएं भी खींचता है। हम क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते, ये बताता है कि हम कौन हैं। और आज भी ताज़ा पौष्टिक भोजन तक किसकी पहुंच है और कौन सस्ते प्रोसेस्ड खाने पर निर्भर है, ये सामाजिक हैसियत का आईना है। भारत में तो भोजन और जाति, भोजन और वर्ग का रिश्ता सदियों पुराना है।
ये तो है।
चौथा संदेश
जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाता है, भोजन की राजनीति से बचना नामुमकिन है।
अच्छा,
मतलब हर हाल में।
हाँ, हमारा हर चुनाव कि हम क्या खरीदें, कहाँ से खरीदें, क्या खाएं, एक तरह का राजनीतिक कार्य है। ये किसी न किसी कृषि व्यवस्था, किसी न किसी कंपनी, किसी न किसी नीति का समर्थन या विरोध करता है, चाहे हम ये जाने या ना जाने। सवाल ये नहीं है कि भोजन राजनीतिक है या नहीं, सवाल ये है कि ये किसकी राजनीति का साथ दे रहा है।
ये सोचने वाली बात है। और पांचवा
जो एक तरह की चेतावनी भी है, स्थिरता और न्याय की जरूरत। मौजूदा खाद्य प्रणाली टिकाऊ नहीं है, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, जलवायु परिवर्तन में योगदान दे रही है और सामाजिक असमानता को गहरा कर रही है। बदलाव जरूरी है
और इसमें हम सबकी भूमिका है।
बिल्कुल, भारत के संदर्भ में देखें तो ये सारी बातें लागू होती हैं। बढ़ती फास्ट फूड संस्कृति बनाम स्थानीय खान पान की परंपराएं, कुपोषण और भुखमरी की चुनौती, किसानों की दुर्दशा, भोजन की जबरदस्त बर्बादी, ये सब उसी बड़े सिस्टम का हिस्सा है।
किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां भी होंगी जो खास तौर पर याद रह जाती हैं, कुछ कोट्स।
हाँ बिल्कुल है, कई ऐसी पंक्तियां हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं। जैसे एक जगह पारसेकुली लिखते हैं, भोजन कभी सिर्फ भोजन नहीं होता, ये हमेशा शक्ति, पहचान और रिश्तों के बारे में होता है।
वाह, ये तो एक लाइन में जैसे पूरी किताब का सार है,
है ना।
या
फिर वो वाला विचार, हमारी वैश्वीकृत दुनिया में स्थानीय और वैश्विक विरोधी नहीं बल्कि डांस पार्टनर है जो एक दूसरे को आकार देते हैं।
हाँ, ये डांस पार्टनर वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा। ये हमें ग्लोबलाइजेशन को एक तरफा देखने से रोकता है, ये एक लेन देन है, एक जटिल नृत्य।
और ये कितना खूबसूरत है, हर भोजन एक कहानी है, हर रेसिपी सांस्कृतिक डीएनए का एक टुकड़ा है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है।
भोजन एक जिंदा इतिहास, एक विरासत।
बिल्कुल, ये सिर्फ खाने की चीज नहीं है। और वो सीधा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, सवाल यह नहीं है कि खाद्य प्रणालियां राजनीतिक होनी चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि उन्हें किसकी राजनीति की सेवा करनी चाहिए।
हाँ, ये जिम्मेदारी तय करता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी पसंद का क्या मतलब है।
और अंत में टेक्नोलॉजी को लेकर वो सावधानी, प्रौद्योगिकी भोजन को लोकतांत्रिक बनाने का वादा करती है लेकिन अक्सर सुविधा के भेष में असमानता के नए रूप पेश करती है।
मतलब हर नई तकनीक के दावों पर तुरंत यकीन करने की जरूरत नहीं, उसके छुपे हुए असर को भी देखना होगा।
सही, ये सारे विचार हमें अपनी थाली को बिल्कुल नए ढंग से देखने में मदद करते हैं।
तो फिर सवाल उठता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन विचारों का क्या करें, मतलब एक्शन क्या लें।
पहला कदम तो शायद यही है कि हम ज्यादा जागरूक उपभोक्ता बने।
जागरूक उपभोक्ता मतलब?
मतलब सिर्फ कीमत या ब्रांड न देखें, रुक कर सोचें, ये आया कहाँ से, इसे उगाया या बनाया किसने, क्या इसे बनाने की प्रक्रिया पर्यावरण के लिए सही थी, क्या इसमें लगे लोगों को सही मजदूरी मिली।
हर बार जवाब मिलना तो मुश्किल है।
मुश्किल है, पर सवाल पूछना शुरू करना ही पहला कदम है। कोशिश करें कि हमारी खरीदारी हमारे मूल्यों से मेल खाए। अगर हम स्थिरता चाहते हैं तो वैसे विकल्प चुने।
ठीक है, दूसरा
सुपरमार्केट और मीडिया को थोड़ा शक की निगाह से देखें। सुपरमार्केट से सुविधा की जगह नहीं, ये बड़ी कंपनियों की ताकत और चालाक मार्केटिंग का अखाड़ा भी है।
हाँ, वो शेल्फ पर सजी चीजें।
हाँ, वो हर चीज इसलिए नहीं रखी है कि वो आपके लिए सबसे अच्छी है, बल्कि इसलिए कि कंपनी उसे बेचना चाहती है। इसी तरह इंस्टाग्राम पर दिखने वाली हर खूबसूरत डिश सेहतमंद या टिकाऊ हो जरूरी नहीं। मीडिया हमारा स्वाद गढ़ रहा है, इसे पहचानना जरूरी है।
तीसरा
भोजन के जरिए दूसरों को समझने की कोशिश करें। अलग अलग संस्कृतियों के खान पान को जानना, चखना, उनका सम्मान करना, ये दुनिया को करीब लाने का एक तरीका है। किसी के भोजन का मजाक उड़ाना असल में उसकी संस्कृति का अपमान है।
ये बहुत जरूरी बात है। और चौथा
और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, सिर्फ उपभोक्ता बनने से आगे बढ़कर फूड सिटीजन यानी खाद्य नागरिक बने।
फूड सिटीजन, खाद्य नागरिक।
हाँ, इसका मतलब है अपनी जिम्मेदारी को समझना और निभाना। जैसे स्थानीय किसानों से खरीदना, भोजन की बर्बादी कम से कम करना, टिकाऊ खेती की पैरवी करना, या अगर मुमकिन हो तो अपनी बालकनी या छत पर कुछ उगाना।
अच्छा, छोटे छोटे कदम।
हाँ, ये एक छोटे छोटे कदम लगते हैं, पर जब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं तो सिस्टम पर असर पड़ता है।
तो इस पूरी बातचीत से मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि फूड लिटरेसी यानी भोजन के पीछे के सिस्टम को समझना आज के दौर में हर किसी के लिए जरूरी है। ये सिर्फ पेट भरने का मामला नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये हमारी संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से जुड़ा है। ये समझ हमें बेहतर नागरिक बनाती है।
और मेरे लिए एक और बात बहुत अहम है, ये जो खाद्य प्रणालियां हैं ना, ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये इंसानों ने बनाई है।
और इंसान इन्हें बदल भी सकते हैं।
बिल्कुल, हमारी पसंद मायने रखती है, हमारे एक्शन मायने रखते हैं। जब हम सिस्टम की तरह सोचना शुरू करते हैं तो आलू खरीदने जैसा सामान्य काम भी ज्यादा सार्थक लगने लगता है।
सही कहा। मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कैसे एक साधारण सी चीज जैसे टमाटर या वो कीनवा हमें पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक बदलावों की कहानी सुना सकती है। भोजन वाकई एक जबरदस्त लेंस है दुनिया को देखने का।
गहरा असर डालता है, ये वाकई चौंकाने वाला था। हम सोचते हैं कि हमें जो पसंद है वो हमारी अपनी पसंद है,
पर शायद ये हमेशा सच नहीं होता।
हाँ, शायद नहीं।
अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज आपकी थाली में जो भोजन है वो आपको क्या कहानी सुना रहा है, और उस कहानी का अगला पन्ना लिखने में आपकी भूमिका क्या हो सकती है? मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।